نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 35 آیت نمبر 274 سے 281 سورة البقرة لیسن نمبر 35 آیت نمبر 274 ٹو 281 تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 274 کی. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں. یہاں سے سبق کا آغاز ہے اور رکوع کا بھی آغاز ہے. پچھلی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے طریقے سکھائے گئے, اس پہ مختلف انداز سے بات ہوئی. بظاہر تو یہ آیت جو ابھی اس وقت ہمارے سامنے ہے یہ پچھلے رکوع میں ہونی چاہیے تھی, اور عقل ایسے کہتی ہے کہ جیسے اس رکوع کا آغاز آیت نمبر 275 جو آیت ربا ہے اس سے ہونا چاہیے تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت ہے. ہم اس آیت کو پیچھے والی آیتوں اور اگلی آیت دونوں کے ناطے سے انشاءاللہ دیکھیں گے, اور اس کی حکمت ہمیں اگلی آیتوں کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں کیوں رکھا. یہاں ذکر ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں. رات ہو جائے تو صبح کا انتظار نہیں کرتے, مبادہ یہ کہ بھول ہی جائیں, اور صبح کو خیال آئے خرچ کرنے کا یا ضرورت مند صبح کے وقت سوال کرے تو یہ نہیں سوچتے کہ اچھا ذرا دن بھر دیکھ لیں پھر اس کے بعد رات کو خرچ کریں گے, بلکہ باللیل والنہار مراد اس سے یہ ہے کہ انتظار نہیں کرتے, ڈیلے نہیں کرتے. سرم و علانیہ, چھپا کر اور ظاہر کر کے. کبھی تنہائی میں کوئی سوال کرے تو یہ سوچ کے روک نہیں لیتے کہ اس وقت اگر دیا تو کوئی تصویر کھینچنے والا ہی نہیں ہے, کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی, تو تھوڑا انتظار کر لیں کہ دوسرے لوگ سامنے آ جائیں پھر دیں, بلکہ دے دیتے ہیں سرن, جیسے اپنا راز چھپایا جاتا ہے نا, اسرار سر, اسی سے ہے یہ لفظ. اور کبھی کبھی اعلانیہ بھی دیتے ہیں, اعلانیہ طور پہ دوسروں کے بیچ میں کوئی سوال کرتا ہے, کوئی ایسا معاملہ ہے جو سب کی باہمی مشاورت کی وجہ سے طے پانا ہے, تو یہ سوچ کے وہاں ہٹ نہیں جاتے کہ نہیں ادھر دیا تو پھر تو ریاکاری ہو جائے گی, دکھاوا ہو جائے گا, بلکہ دے دیتے ہیں. ایسے لوگ جو مال کو خرچ کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاتے, فلحم اجرحم اندا ربہم, ان کا اجر ان کے رب کے ذمے ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے اس عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ ہم جو بھی خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے غموں سے بے نیاز کر دے گا. کیسے؟ ولا خوف علیہم, ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا. کس چیز کا خوف نہیں ہوگا؟ دنیا کے غموں کا خوف, دنیا کی چیزوں کا خوف, مستقبل میں کیا ہونا ہے, اور نہ کوئی غم ہوگا پچھلی چیزوں کا غم. آپ اس آیت میں دیکھیں تو چار مختلف کیفیات بیان کی گئیں, اور کسی انسان کی یہ چاروں میں سے کوئی ایک ہی کیفیت ہوتی ہے ہر وقت, یا رات کے وقت میں ہم ہوتے ہیں یا دن میں, یا اکیلے ہوتے ہیں یا دوسروں کے بیچ میں. جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے نا, پھر وہ انتظار نہیں کرتا, وہ جھوٹے وعدے نہیں کرتا, اچھا ابھی نہیں بعد میں, سوچ لینا, اچھا ابھی نہیں پھر آنا, بلکہ وہ اس کام کو کر گزرتا ہے. اور صحابہ کرام کا ایمان اسی درجے کا تھا کہ وہ اللہ کی بات کو سن کر مان لیتے ہیں. اب اب اس آیت میں دیکھیے کہ ایسے لگتا ہے کہ کوئی شخص ہے اور ہر لمحے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہے. عموماً مال دیتے ہوئے دل پہ چوٹ پڑتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, لیکن اس آیت کا اینڈ بڑا قابل توجہ ہے کہ یہ اپنا سب کچھ بھی دے کر پاتے کیا ہیں؟ خوف اور غم سے آزاد زندگی. कोई गम इनकी जिंदगी में नहीं रहता। इसके बरक्स कुछ और लोग हैं जो देने वाले तो नहीं बल्कि पाते ही पाते हैं। जिस तरह ये सुबह शाम रात दिन अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए तैयार हैं, इसी तरह वो रात दिन सुबह शाम लोगों का माल हथियाने के लिए सरगर्मे अमल है। ये सब कुछ देख के अपने आप को खाली हाथ कर लेते हैं और वो हर लम्हे अपनी तिजोरियों में नोटों की गड्डियां ही सीधी करते रहते हैं। अकल से पूछें तो खुश किसको होना चाहिए? उसको जिसके पास माल है। लेकिन अल्लाह ताला ने इस आयत को यहाँ लाकर बता दिया कि सब कुछ देकर भी बंदा टेंशन फ्री लाइफ हासिल कर लेता है। और इसके बरक्स वो लोग जो अल्लज़ीना याकुलूनर रिबा, जो लोग सूद खाते हैं, यहाँ लफ्ज़ खाने का मुहावरे के तौर पे आया क्योंकि सूद का मुनाफा सिर्फ इंसान खाता नहीं है, पहनता भी है, घर भी बनाता है, लेन देन भी करता है। लेकिन खाने की बात यहाँ करके ये बता दिया कि खाना एक तो वो चीज़ है जो एक दफ़ा आपके जिस्म में चला जाए तो वापस नहीं आप ले सकते। एक वजह ये है क्योंकि बाकी चीज़ें आपको दिखती हैं, कपड़े हैं, चीज़ें हैं, कोई अगर उससे वापस लेना चाहे आप छीन सकते हैं, लेकिन जो खा गए वो खा गए। दूसरी वजह इसकी क्या है कि जो इंसान खाता है ना वो जिस्म के एक एक उज़ तक पहुंच जाता है। जिसने लोगों का खून चूसा अल्लाह ताला उसकी तासीर उसके जिस्म के एक एक अंग में डाल देता है और नतीजा क्या होता है कि वो उसका पूरा जिस्म दुनिया में भी मफलूज हो जाता है, उसका दिमाग उसकी अकल सोचने समझने से महरूम हो जाती है, कोई उसके सामने रोए चिल्लाए उसको पता नहीं चलता, और उसका जिस्म का बाल बाल सूद के गुनाह में गुनाहगार हो जाता है और इसी की सज़ा उसको क़यामत के दिन भी मिलेगी। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला फिर इस पूरे जिस्म से पूछेगा कि तू किस माल से पला भरा था। क्या होगा इनका मामला? ला यकूमूना, नहीं वो खड़े होंगे, इल्ला मगर कमा यकूमुल्लज़ी यतखब्बतुश शैतान मिनल मस, जैसे कि खड़ा होता है वो शख्स जिसको शैतान ने छू कर मखबूतुल हवास बना दिया हो। ये नहीं कहा कि वो दीवाने हो जाएंगे, मजनू हो जाएंगे, बल्कि ये कहा कि जिसको जिन चिमट चुका हो। ये लफ्ज़ भी काबिल गौर है और इस आयत को बल्कि इसके अगली 6 आयतों को भी इसी तरह हम हल्की हल्की वजाहत के साथ करेंगे और दोबारा फिर इसको अमल के नुक्तों के साथ देखेंगे। यहाँ ये बात कह के कि वो लोग जो सूद को खाते थे यानी सूद का लेन देन करते थे, क़यामत के दिन वो अपनी कब्रों से जब उठेंगे तो बावले बन के उठेंगे। खड़े होने से मुराद यहाँ महशर में कब्र से उठना है कि सूदखोर जब कब्र से उठेगा तो पागल और मजनू की तरह उठेगा जिसको शैतान ने खपती बना दिया। इस जुमले से एक तो ये बात पता चलती है कि जिन्नात और शयातीन का असर इंसान पर होता है। जैसे बाज़ लोग इनकार करते हैं ना कि हम नहीं मानते कि जिन चिमटते हैं या वट एवर या आसेब होता है, ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है। और इस चीज़ पर मुशाहिदात गवाह हैं कि लोगों को जिन चिमटते भी हैं वो उनको बावला भी बना देते हैं, और इसी तरह सुरा, बेहोशी, हुज़न, जुनून, ये सब चीज़ें किताबों में मिलती हैं कि बाज़ दफ़ा जिन्नात और शयातीन इंसान को काबू कर लेते हैं। दूसरी बात यहाँ ये काबिल गौर है कि सूदखोर महशर में पागल या मजनू होकर नहीं उठेंगे बल्कि दीवाना या फिर दीवानगी की एक ख़ास किस्म की बेहोशगी जो शैतान की लपट से होती है। ये क्यों कहा? इसकी वजह क्या है कि जब एक बंदा पागल हो जाता है ना तो एहसास से आरी हो जाता है, उसको तकलीफ़ का एहसास नहीं होता। बाज़ दफ़ा इंसान बेहोश हो जाता है ना तो तकलीफ़ उसको एहसास नहीं होती। इसके बरक्स जिस शख्स को शैतान छू जाए या उसको जिन चिमट जाए उसको दुख और तकलीफ़ का एहसास होता है। तो गोया कि यहाँ उनकी हालत को बयान किया गया कि दीवानगी का ये मतलब नहीं कि वो बड़े ऐसे बेवकूफ होंगे और उनको होश नहीं होगी, बल्कि वो खबती होंगे। और ऐसा क्यों होगा? ये है अल्लाह ताला का एक असूल, और वो क्या है कि जुर्म और सज़ा में मुनासबत होती है आमाल की। इंसान जिंदगी में जो काम करता है ना, कयामत के दिन बिल्कुल उसी के मिलते जुलते हालात वहाँ होंगे। जिस किस्म का अमल दुनिया में होता है ना, उसी तरह की जजा या सज़ा वहाँ होगी। मसलन एक शख्स दूसरों को खाना खिलाता है, उसको बहुत शौक है, तो उम्मीद की जाती है कि जन्नत में उसकी ज़्यादा एंटरटेनमेंट खाने से की जाएगी। इसी तरह कोई शख्स दुनिया में कोई ख़ास गुनाह करता है, तो सज़ा उसको उसी तरह की दी जाएगी। यहाँ यही असूल है। जो सूदखोर होता है ना, वो दुनिया में रुपए पैसे की हिरस और माल को कमाने में इतना मदहोश होता है कि ना इसको किसी गरीब पर रहम आता है, ना इसको किसी की शर्म रहती है। उस पर एक धुन सवार होती है कि मैंने और माल कमाना है, इसलिए अल्लाह ताला ने महशर में भी उसको यही सजा दी कि जो तुमने पसंद किया था वो तुम अब वहां भुगत लो। इसको महसूस करें जरा, किसी इंसान को अगर दुनिया में आपने इस कैफियत में देखा हो कि जिस पे जिन चिमटे हों और वह मुंह से अजीबो गरीब आवाजें निकाल रहा है, कभी झाग निकलती है, कभी उसकी आंखें ऊपर चली जाती हैं, पत्थरा जाता है, तो अल्लाह ताला ने ये सजा यहाँ बयान की सूद के माल के साथ मामला करने वाले की। क्यों भाई इतनी बड़ी सजा? इसकी वजह क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं जालिका, ये जालिका के नीचे लिखिए ये सजा, यानी ये हालत या ये सजा इनकी क्यों हुई? इसलिए कि बिया नहुम, बवजह इसके कि ये लोग कालू कहते थे, इन नमल बैयु मिसलो रिबा, के तिजारत भी तो आखिर सूद ही जैसी चीज है। बस ये एक जुमला कहने की सजा है, एक एक लफ्ज़ पे गौर करने की ज़रूरत है। कोई तफसीलात नहीं, बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी नहीं, सिर्फ ये जो हालत हुई है ना, इसकी इसकी वजह क्या है कि ये कहता क्या था कि तिजारत और सूद में कोई फ़र्क नहीं, एक ही तो चीज़ है। इस एक जुमले से इनके नज़रिए की खराबी दिखती है कि इसकी सोच कितनी ख़राब थी, कि ये कहता था कि आखिर तिजारत में भी तो नफ़ा ही होता है ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर सूद पे किसी को माल दे लेकर कोई नफ़ा हासिल करे। या मैं एक हल्की सी बात कह दूं कि हम सूद क्या होता है उसकी किस्म पे बाद में बात करेंगे, इसलिए आप थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। मैं चाहती हूँ कि जो तरतीब अल्लाह की है वही पहले रखी जाए। हम पहले इन 6 आयतों को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद कुरान पाक की बाकी आयतों और अहादीस को सामने रखते हुए इंशाअल्लाह ताला इस मौजू पे सैर हासिल बात करेंगे। ख़ास तौर पे हमारी जो आज की या इस मौजू पे बात होगी वो मौजूदा दौर में इसकी कबाहतें और उसका हल होगा कि हम कैसे इससे अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, तो दोबारा आयत पे आते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि इसकी ये हालत इसलिए हुई कि वो ये कहता था कि सूद और तिजारत दोनों एक ही जैसी चीज़ें हैं। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने इस जुमले का जवाब नहीं दिया, ये नहीं कहा कि नहीं ये गलत कहता था और सूद और तिजारत में फ़र्क था, बल्कि अल्लाह ताला अब आगे क्या कह रहे हैं, ये जो अगला हिस्सा है ना, ये अल्लाह ताला का कमेंट है, ये अल्लाह ताला का फैसला है। व अहल्लल्लाहुल बैया, और हलाल किया है अल्लाह ने बै को। बै कहते हैं ट्रेडिंग को, लेन देन करना। व हर्रम रिबा, और उसने हराम किया रिबा को, सूद को। ये है 100 बातों की एक बात। लोग कितना ही सर फोड़े ना, सूद की बारीकियों पे बात करें, उसको जायज़ कहें, उसको नाजायज़ कहें, उसको माजी से और आज के दौर से उसको अलग करें, इन सारी बातों को आप एक पलड़े में डाल दें और दूसरे पलड़े में एक जुमला अल्लाह ताला का काफ़ी है सूद के हुक्म को समझने का। सिर्फ समझ उसको आएगी जो समझना चाहेगा, जो दिल से टूट चुका है, जो अल्लाह के आगे झुक चुका है। एक जुमला काफ़ी है किसी चीज़ के हलाल होने का और किसी चीज़ के हराम होने का, और वो क्या, کہ اللہ اس کو حلال کہہ دے اور اللہ اس کو حرام کہہ دے، اس کی حکمتیں ہوں گی، لیکن میرے رب نے اس کو حلال کہہ دیا اور میرے رب نے اس کو حرام کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پوچھتے ہیں کہ تم جو اپنی عقل استعمال کرتے تھے کہ تجارت اور ربا ایک ہی جیسی چیز ہے اور اس میں بھی نفع، حالانکہ وہ دونوں ایک جیسی نہیں ہیں، ابھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی چیز کے اندر عقل کے گھوڑے دوڑانے سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لو کہ جس کو اللہ حلال کہہ دے نا، وہ تمہارے لیے حرام نہیں ہو سکتا، یعنی حلال کہے اور وہ تمہیں اچھا نہ لگے لیکن وہ حلال ہے، اور جس کو اللہ حرام کہے وہ حرام ہے۔ تو اللہ کا فیصلہ کیا ہے کہ بے ٹریڈنگ تجارت حلال ہے اور ربا حرام ہے۔ مجھے جیسے لگتا ہے کہ اس کے بعد ہمیں کہہ دینا چاہیے سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون، بات ختم، پیغام پہنچ گیا۔ جس کا دل کھلا ہوتا ہے نا اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے، وہ کہے گا بات سمجھ آ گئی، الحمدللہ آج کا دن وہی تھا کہ جس دن مجھے یہ مسئلہ سمجھ آنا تھا کہ بھئی کیا کہنے کی ضرورت ہے، جب اللہ نے لفظ حلال بول دیا اور ادھر حرام بول دیا تو پیچھے کیا رہا۔ کیونکہ اکثر چیزوں میں لوگ کہتے ہیں کہ حرام کا لفظ کہاں لکھا ہے، شراب کی حرمت میں لوگ تاویل کرتے ہیں، آپ اس کے موضوع میں سن سکتے ہیں جا کے، زنا پہ لوگ بات کرتے ہیں، لوگ کئی چیزوں میں بات کرتے ہیں، جی حرام کا لفظ دکھائیں، نہیں حدیث نہیں قرآن کا لفظ دکھائیں۔ تو یہاں تو الحمدللہ حرم اور ربا ایک پورا جملہ عربی کا، اس نے حرام کیا، یہ اب حرم یحرم تحریم، باپ کو اگر پیچھے جا کے دیکھیں اس نے حرام کر دیا ربا کو، یعنی اللہ نے سود کو حرام کر دیا۔ کوئی سوال کرنا چاہتے اس کے بارے میں کیوں حرام کیا؟ اس کی مرضی۔ اس کو کیوں حلال کیا؟ اس کی مرضی، وہ مالک الملک ہے، وہ مقتدر ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ آپ کہتے نہیں ہمیں حکمت سمجھ آنی چاہیے، نہیں بھائی آپ کو نہیں آ سکتی، کیوں؟ آپ کی سمجھ ابھی چھوٹی ہے۔ اس بات کو سمجھ لینا تو آپ اپنے آپ کو چھوٹا بچہ بنائیں کچھ سال کا، اور اس کے سامنے باپ کھڑا ہے، بچہ باپ سے کہتے مجھے اس کی وجہ سمجھائیں، کیوں صبح 7 بجے اٹھ کے اسکول جاؤں، باہر بارش ہو رہی ہے، برف پڑ رہی ہے، میں کیوں جاؤں، مجھے اس کی لاجک نہیں سمجھ آتی، یہ کڑوی دوائی میں کیوں پیوں، میں کیوں آئس کریم نہ کھاؤں۔ تو آگے سے باپ کیا کہتا ہے کہ بیٹا آپ ابھی بہت چھوٹے ہیں، آپ کو یہ باتیں آج سمجھ نہیں آتی، یہ جو آج آپ کو کتابیں پڑھوائی جاتی ہیں یہ کل آپ کا مستقبل بن رہا ہے۔ ہر بات بچوں کو سمجھ نہیں آتی نا، تو بس یہاں اپنے آپ کو جھکا لیں یہ سوچ کے کہ یہ مسئلہ بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا، بس میرے رب نے کہہ دیا اور سمعنا واطعنا، میں نے سن کے مان لیا، ہر بات کی حکمت سمجھ نہیں آتی۔ لیکن اس کے ساتھ ذہن میں یہ رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جہاں قادر ہے اور ہر فیصلہ کر سکتا ہے نا، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہ جو چاہے کرے جو نہ چاہے کرے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ الحکیم بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں، اور الحلیم بھی ہیں، حلم والے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان نافع بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیارا نام ہے نفع دینے والے، اور اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نیمز کو آپ دیکھیں نا تو اس میں کتنی ایسی صفات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو نقصان سے بچانے والے بھی ہیں۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس جملے پہ میں اللہ تعالیٰ کے وہ سارے نام بول دوں کہ جس سے یہ یقین ہو جائے کہ اگر اللہ نے ایک کو حلال کا ایک کو حرام، تو یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے، یہ غصے کا فیصلہ بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ وقت سے پہلے آگاہ کر دیتا ہے لوگوں کو۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمیں اس موضوع پہ بات کرنے سے پہلے اسماء الحسنیٰ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں آپ کو شریعت کا کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے نا، تو سمجھ لے کہ ابھی اللہ کی ذات کے بارے میں صحیح تعارف ہی نہیں ہوا۔ جب آپ کو کسی کی حیثیت سمجھ آ جاتی ہے نا، یہ میرا باس ہے، یہ میرا شوہر ہے، ہاں یہ پرائم منسٹر ہے، یہ ہمارے ادارے کے پریزیڈنٹ ہے، تو پھر اس کے بعد عقل جھکتی ہے نا۔ اور جو کسی کو باس ہی نہ مانے، شوہر ہی نہ مانے، پریزیڈنٹ نہ مانے، کیا چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سمجھ آئیں گی؟ نہیں آتی۔ یہی حال ہے آج انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی بعض باتیں اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کا مقام نہیں پتا، اور بعض باتیں اس لیے بھی سمجھ نہیں آتی کہ اپنی ہستی کا بھی نہیں پتا کہ ہم ہیں کیا۔ اور جس بات کو سکھانے کے لیے دن میں 17 بار آیت الکرسی میں अल्लाह का तारुफ और बंदे का मुकाम बताया जाता है, वो चूंकि बगैर सोचे समझे पढ़ते हैं तो समझ ही नहीं आता। वरना जिसको पता चल जाएगा ना कि मेरी जात कौन सी है, मेरा रब मेरा दुश्मन नहीं है, वो मुझसे मोहब्बत करने वाला है, वो अल वदूद है। अल्लाह की जात अल मुकद्दिम है और अल मुअख्खिर। अल मुकद्दिम कहते हैं वो जात जो वक्त से पहले आपको खतरों से आगाह कर दे, और अल मुअख्खिर वो जात है कि जो तकलीफों को खराब चीजों को आपसे दूर कर दे, ताखीर करवा दे। वो जात कह रही है कि हल्लल्लाहुल बैय व हर्रम अर्रिबा। अब आप इसकी जितनी मर्जी बातें कर लें, आपकी मर्जी है। ये जो जुमला था कि इन्नमल बैयु मिस्लुर रिबा, ये एक झूठ है जो हर वो शख्स बोलता है जो सूद को हलाल करार देना चाहता है। हम टैली करेंगे कि तिजारत और सूदी लेन देन एक क्यों नहीं है या अलग कैसे है, इसके अंदर क्या फ़र्क है और कैसे नहीं। पहली बात ये कि तिजारत में पैसा और मेहनत लगती है, जबकि सूद में सिर्फ पैसा तो लगता है, मेहनत नहीं होती, ऐसे ही है ना। फिर दूसरी बात देखिए कि तिजारत में रिस्क होता है, कम भी हो सकता है माल, सारा भी डूब सकता है और डबल भी हो सकता है, जबकि सूद में रिस्क बिल्कुल नहीं होता, एक मुकर्रर शरह है। फिर एक और फ़र्क देखिए कि वक्त के साथ पैसे की वैल्यू बढ़ती जाती है। आज आप $10,000 कहीं लगा रहे हैं, हो सकता है अगले साल वो 10,000 यूनिवर्सली 12,000 के हो गए, और ये भी हो सकता है कि 8 के हों। डॉलर ऊपर जाएगा तो बढ़ जाएंगे, कम होंगे तो नीचे जाएगा। लेकिन जिसने उस 10,000 पे एक फिक्स्ड 5% 10% का इंटरेस्ट रख के प्रॉफिट लेना शुरू किया, या तो उसके साथ ज्यादती होगी या दूसरे के ऊपर ज्यादती होगी। तो किसी चीज़ को फिक्स कर देना, ये चीज़ जो होती है सूद में होती है, जबकि तिजारत में कमी बेशी हो सकती है। फिर इसी तरह आप देखिए कि तिजारत में मामला जो होता है ना, एक दफ़ा हो जाता है। आज आपने एक सौदा किया ना, डन, अब या तो उससे फ़ायदा हो गया या नुकसान। जबकि सूद में मुसलसल इजाफा हर महीने या हर साल होता है, यानी ये डील ख़त्म नहीं होती अगले 20-25 साल तक। फिर इसी तरह आप देखिए कि तिजारत में जहानत लगती है, मेहनत लगती है, एफर्ट होती है, हर चीज़ हरकत में होती है, जबकि सूद में घर बैठे आराम से नफ़ा मिलता है। नतीजा क्या हुआ कि जो लोग सूद के ऊपर पैसा लगा के घरों में बैठते हैं, वो घर वालों के लिए बोझ बन जाते हैं। घर का सुकून क्या होता है कि मर्द सुबह उठ के घर से जाए, कुछ भी काम करे, कमाए ना कमाए, उसका सुबह घर से निकलना घर में खुशगवार तासुर लाता है। बीवी खुशी खुशी उसका सामान तैयार करती है, खिलाती है, पिलाती है, और बीवी को वक्त मिल जाता है घर को सही करने के लिए, दोबारा शौक से उसके लिए खाना पका के तैयार होती है, इंतज़ार करती है। इसके बरक्स जो लोग अपना पैसा सिर्फ इस तरह के कामों में लगा के घर बैठते हैं, सारा दिन बीवी बच्चों के सर पर एक बोझ बने होते हैं। लड़ाइयाँ उन घरों में ज़्यादा होंगी जहाँ मर्द घरों में रहते हैं। कशिश ख़त्म हो जाती है, हर वक्त की तनकीद, घरेलू ज़िंदगी बर्बाद, बीवी पर शक, बच्चों के साथ रोक टोक। आप इसको करते जाइए, सारी बातों में आप ये कह देंगे कि तिजारत एक तामीरी काम है और दूसरा काम है वो एक तहरीबी काम है। नतीजा क्या निकलता है कि हम कह दें कि ये एक जैसा है लेकिन वो एक जैसा नहीं। सूद में नुकसान का डर ही नहीं होता, असल मनी सेव होती है, जबकि तिजारत में कमी बेशी होती है। खैर, ये बात थोड़ी सी समझ आ गई। आगे क्या है? फमन जाअहु मौइज़तुम मिर रब्बिही, पस वो जिसके पास आ गई उसके रब की तरफ से एक नसीहत। यहाँ मौइज़तुम मिर रब्बी से कौन सी नसीहत मौजूद है? यही जो पीछे गुजर गई इस खास हुक्म के बारे में। अब क्या करे? फनतहा, पस वो रुक गया, यानी इस लेन देन से रुक गया। अब उसका मामला क्या है? फलहू मा सलफ, बस उसके लिए है जो हो चुका। ये भी नहीं कहा कि पिछला माफ है, कहा बस तुम इंसानों अब उसके मामले में मत बोलो। मुफस्सरीन कहते हैं कि ये इतना कबीह फेल है कि अल्लाह ने छोड़ने वाले को भी ये नहीं कहा कि मैं जरूर माफ कर दूंगा, कहा फलहू मा सलफ, जो कर दिया वामरुहु इलल्लाह, उसका मामला अल्लाह पे है। तरगीब भी है और तखवीफ भी है, उम्मीद भी दी जा रही है कि अल्लाह माफ़ कर देगा, यानी अल्लाह अब उसका अगला अमल देखेगा आगे क्या करता है, और ये भी हो सकता है कि अल्लाह खुद उनसे पूछे। यानी ये वो वाहिद फेल है कि जिस पे छोड़ने वाले को भी 100% ये नहीं कह दिया। आमतौर पे ये होता है ना, लहु मग़फ़िरतुन व अजरुन कबीर, नहीं, कोई मग़फ़रत का लफ्ज़ नहीं है, कुछ नहीं कहा कि अल्लाह उसको छोड़ देगा, बस का फलहु मा सलफ, उसका मामला यही ख़त्म जो माजी था, तुम इंसान ना बोलो, व अमरुहु इलल्लाह, उसको अल्लाह के ज़िम्मे डाल दो, अल्लाह के हवाले कर दो, वो जो चाहे कर ले, चाहे उसके खाए पिए लिए दिए को माफ़ कर दे, चाहे कुछ पूछ ले, या जो उसका दिल चाहे वो करे, तुम उस बंदे के बारे में मत बोलो। लेकिन वमन आदा, लेकिन जिसने दोहराया, आदि हुआ, एआदा किया, यानी इस बात को सुनकर फिर उसी हरकत का एआदा किया, मुराद क्या कि इस लेन देन से ना बाज आया, फौलाइक असहाबुन्नार, तो ये आग के साथी हैं, ये इनका नसीब एक ही है, आग, हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। इस लफ्ज़ को हाईलाइट कर लें, एक अलग टॉपिक में हम इस पे बात कर चुके हैं जिसका हवाला दूंगी, कि जहन्नुम की आग के लिए अल्लाह ताला ने सिर्फ कुफार और मुशरिकों को ये कहा है कि वो उसमें हमेशा रहेंगे, मुसलमान को इस मुकाम के सिवा, मेरे इल्म में नहीं है, कहीं हो तो कोई बता सकता है, कुछ गुनाहगार मुसलमान जहन्नुम में जाएंगे और अपने आमाल की सज़ा भुगत कर वापस जन्नत में भेज दिए जाएंगे, ये एक जनरल असूल है, ये याद रखें। और अल्लाह के नबी की वो मारूफ रिवायत है कि जिसके दिल में एक राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, बिल आखिर उसको अल्लाह ताला जन्नत में ले जाएंगे, ये बात सबने सुनी होगी ना। लेकिन यहाँ नोट कीजिए कि अल्लाह ताला ने कहा खुम फीखा खालिदुन, यानी ये वो मुकाम है जहाँ एक ईमान वाले या मुसलमान कहलाने वाले को भी जहन्नुम के खुल्द की वईद सुनाई गई, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। किस बात का गुनाह, इतनी सजा क्यों? इसलिए कि सुन के नहीं माना, बात पहुंच गई फिर भी तावीलात करता रहा, नहीं नहीं कुछ नहीं होता, आज ऐसा नहीं, कल की बातें और थी, आज की बात और, ये थी वो थी। और दुनिया में किसी पे आपको गुस्सा आ जाए ना, जो आपकी बात सुन के ना माने, तो आप भी कह देते हैं कि अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, पीछे हो जाओ। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम मेरी बात को सुनकर नहीं मानते, लिहाजा अब तुम पड़े रहो इसी में, तुम्हारा ठिकाना ही ये है, तुम कलमाए कुफर कह चुके हो। इनका कुफर क्या था कि सूद मिसलु रिबा, यानी सूद जो है वो बै के बराबर है। अल्लाह के एक हुक्म का इनकार करने वाला बाज़ औक़ात पूरा मुनकिर हो जाता है, ये एक जनरल सा असूल याद रखिए कि बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं कि सिर्फ एक हुक्म का मुनकिर सारे हुक्मों का मुनकर हो जाता है।